अनंत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेबर रमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचन सार परमागम साक्षात भगवान दिव्य ध्वनि का सार, केवली भगवान जिन्हें स्वयं केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वो केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं। इस अधिकार में केवल ज्ञान क्या है, कैसे जानता है, एक बात तो हम कह सकते हैं, वह सब पदार्थों को जानता है। ऐसा कोमन कहने से वो भाव भाषित नहीं होता। जब हम थोड़ा ही डिटेल करें उसको, तो मालूम पड़ता है कि केवल ज्ञान में सबको जानते हैं का मतलब क्या। कच्छा ही द्रव्यों को, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इच्छे द्रव्य हैं हम भी जानते हैं, तो हम भी केवली हैं। ऐसे नहीं, प्रत्येक द्रव्य उसके एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, एक एक गुण की अनंतानंत पर्याय, तीन काल के जितने समय हैं उतनी पर्याय, न एक कम न एक ज्यादा। ऐसे अनंतानंत द्रव्य, क्योंकि क्या जीव ही द्रव्य थोड़ी है, अपना जीव फिर अनंत जीव फिर उद्गल आदि अनंत गुण है, उससे धर्म धर्म आकाश, इस सब मिलाकर जितने द्रव्य हैं और उनकी उनमें एक एक में अनंत अनंत गुण है, और एक एक की फिर अनंत अनंत पर्याय हैं। कितना होगा विस्तार कि वो सब जानते हैं, वो बहुत जानते बहुत जानते बहुत जानते से नहीं जान चलेगा। किस समय किस द्रव्य की गुण गुण की कौन सी पर्याय होगी वो जानते हैं। अभी विचार करो, अभी जो आप यहां बैठे हैं सामने, और आपके ज्ञान गुण की पर्याय का जो भी गेय बन रहा है, उस बात को महावीर जानते थे, वे बता सकते थे कि इस सभा में इतने लोग आएंगे और फला फला आएगा, वो कहां बैठेगा, उसको बैठने की जगह क्यों, उसके आगे पीछे कौन बैठेगा, वो सब ऐसी फालतू की बातें हैं। भाई सब सब का मतलब क्या है? और वो प्रवचन सुनेगा, फला व्यक्ति का प्रवचन होगा, और सुनते सुनते बीच में एक क्षण को अपने गांव में हो आएगा और वहां अपने पत्नी से मिलके आ जाएगा। क्यों? वो बात भगवान महावीर जानते हैं कि नहीं जानते? अभी वो जाने वाला भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता कि मेरा उपयोग एक क्षण को यहां से हटके कहां पहुंच जाएगा, वो खुद ही नहीं जानता, ख्याल नहीं ना अभी। लेकिन भगवान महावीर जानते थे, ऐसा केवल ज्ञान। और हमने यदि अपने उपयोग को वहां नहीं ले गए तो फिर महावीर के ज्ञान का क्या होगा? कि महावीर के ज्ञान का तो जो होगा सो हो जाएगा, लेकिन तेरा क्या होगा? क्योंकि तूने उस ज्ञान की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया कि जिसका जो गेय जिसमें बनना है वो अनंत काल पहले से न किया किरमत पर्याय के हिसाब से करो, और छयोसम लक्षण योग्यता प्रतिनियर्थमर्थम व्यवस्था प्रति, इस सूत्र के अनुसार वो जब छयोक्षम हुआ तब से है। अंतर समझना है? नहीं है तुम्हें? छयोक्षम हुआ मैंने क्या? देखो छय ज्ञान में तो सब लोकालोक झलकता है, और छयोक्षम ज्ञान में कुछ झलकता है और कुछ नहीं झलकता है, तो कौन कौन को जाने और कौन को नहीं जाने। एक तो इस तरह की योग्यता होती है कि मेरा जो छयोक्षम ज्ञान है उस ज्ञान में ये चीजें जानने की योग्यता है, एक योग्यता तो हो राजेंद्र जी, और दूसरी योग्यता एक किसको जाने, अंतर समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूं, टोडर मल जी ने लिखा ना, एक आदमी में पांच गांव जाने की शक्ति है, ख्याल में आए ना, लेकिन एक समय में एक ही गांव जाए ऐसी शक्ति, उस शक्ति में भी ऐसी शर्त लगी है कि पांच, इन पांच गांवों में जा सकता है वो, लेकिन एक समय में एक ही गांव में जाएगा। क्यों? तो एक समय में एक ही गांव में जाएगा, जिसमें चाहे वो उसमें जा सकता है ना, योग्यता है उसमें, एक में जाएगा, दो में नहीं जाएगा। अब पांच में उसे चुनाव तो करना है कि मैं किस में जाऊं, तो वो कहते हैं कि वो भी नक्की है कि तू किस कहां जाएगा, किस उपयोग कहां जाएगा, उसमें भी तू रंच मात्र भी बदल नहीं सकता। यदि तू बदलता का की भाव भी करता है तो वो तत्व के विरुद्ध होगा, यदि श्रद्धा में करेगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा, और अकेला राग ही होगा तो चरित्र का दोष हो जाएगा। चरित्र का होता है दोष और श्रद्धा के का होता है अपराध। अपराध में और दोष में अंतर समझते हो? ये अपराधी है और ये दोषी है। माफ के काबिल अपराध को दोष बोलते हैं। जिन अपराधों में समझौता हो जाता है अदालत में, फिर जाओ तुम दोनों बैठ के समझौता कर लो और लिख के दे दो कि हमने समझौता कर लिया, तो अदालत ये नहीं पूछे कि क्या समझौता किया, मान जाएगी ना, ये वो दोष है। और अपराध में उसने उसकी हत्या कर दी, सब हमने समझौता कर लिया, नहीं चलेगा, फिर आपको सजा मिलेगी मिलेगी और मिलेगी, समझ गए ना। अपराध मिथ्यात्व तो अपराध है और चारित्र का वो दोष है। तो जब तक पूर्ण निर्मल चारित्र नहीं हुआ तो ऐसा विकल्प हमें आ सकता है पलटने का। भगवान ने देखा कि आपका उपयोग 45 मिनट के व्याख्यान में 10 मिनट डिस्टर्ब रहेगा और अपने गांव में घूम के आएगा, समझे ना। केवल ज्ञान मैंने ये जान लिया था कि साहब मैं कैसे करूं, मैं यहां आया हूं काय के लिए आया हूं, और अब आपने बता दी तो मैं पूरी ताकत लगाकर उपयोग को जाने ही नहीं दूंगा। क्यों? तो तू तो उस वस्तु के स्वरूप को बदलने के भाव वाला हो गया, तो ये अपराध है, क्योंकि तूने केवल वस्तु के स्वरूप की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। अब तेरे विकल्प तो ऐसा आ गई कि फंडामेंट मेरे बेकारी चले जाएंगे, फंडामेंट कौन सी अच्छी बात निकल जाएगी, मेरा कैसा अभागा हूं मैं, तो ऐसा विकल्प तो आ सकता है। ये भी उस व्यवस्था के तो विरुद्ध है जो केवल ज्ञान में जानी गई है, फिर भी ये दोष है, हमें अस्वीकार नहीं है वो व्यवस्था। होगा तो वही भैया जो केवल जी ने देखा है, लेकिन ऐसा क्यों देखा केवल जी ने? क्योंकि वस्तु का अपना भाव इसके विरुद्ध हो सकता है, विरुद्ध माने मुझे ये नहीं चाहिए, ख्याल में है ना। उसे लोग अच्छा भी कह सकते हैं, ये भी कहते तो उसने तो बेचारे ने पूरी कोशिश करी, लेकिन ये सही दिशा में नहीं करी ना, क्या ये कोशिश उसने सही दिशा में नहीं की ना, हर चैलेंज को स्वीकार क्यों करना, सहज भाव से स्वीकार क्यों नहीं करना, हर बात में नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। जब नेमिनाथ ने कहा था कि द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएगी, दीपायन मुनि का क्रोध निमित्त होगा और शराब निमित्त होगी, तब उनने कोई चैलेंज नहीं दिया था किसी को कि मैं जला दूंगा, कोई माई का लाल आए तो रोक ले, ऐसा नहीं कहा था उनने। तो सहज भाव से द्वारका जलती हुई उनके ज्ञान में दिखी थी, 12 वर्ष बाद कैसी जलेगी वो बहुत स्पष्ट उनके ज्ञान में आई थी, और सहज भाव से उनकी दिव्यध्वनि में निकल गई ना। वे दिव्यध्वनि के करता है, क्योंकि दिव्यध्वनि भाषा प्रकरण का काम है, क्या सहज भाव से निकल गई, उनने किसी को कोई चैलेंज नहीं दिया था। अरे उनने ऐसी बात क्यों कही, ऐसा क्यों कही, अरे ऐसी क्यों कही का सवाल कहां उठा, वस्तु स्वरूप था, निकल गया। अब वहां जो कुछ लोग बैठे थे सभा में, ऐसा कहते तो हैं कोई मिथ्या दृष्टि लोग नहीं जाते हैं सभा में, वो तो मिथ्या दृष्टि माने गीत मिथ्या दृष्टि, गीत मिथ्या दृष्टि माने जान ठोक के विरोध करने वाले, तो वे जाएंगे ही काय को, वे जाएंगे ही काय को वहां, ख्याल में है ना। उन्होंने देखो इनके क्या है, जो जो उनके मुंह में आ रहा है तो बोले जा रहे हैं, किद्वार का जल जाएगी, कैसे जल जाएगी, हमारे रहते हुए कैसे जल सकती है, कि दीपायन मुनि कौन, दीपायन मुनि कौन होता है, बड़ा देख देख लेते हैं वो शराब बंद, शराब बंद, शराब ही नहीं रहेगी तो क्या जलाएगी, देखें कौन जलाता है। ऐसा भाव भी वहां बैठे लोगों को मन में आ रहा था, वचन से तो नहीं बोल सकता, भगवान के समोषण में उनका पुण्य प्रताप भी इतना तेज होता है कि किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। यहां भी देखो ना, इतने सब लोग बैठे हैं और किसी को कोई बात नहीं जचे तो उसको कुछ कहने का भाव आए लेकिन हिम्मत नहीं होती तो नहीं बोलता है, क्यों है? समझ गए ना आप, क्यों छोटा मोटा बच्चा बैठा हो तो गला पकड़ लेता है, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कह, ये गलत है, ये गलत है, कुछ भी बेचारे को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। वो ये नहीं समझता है कि मैं जनमानी के विरुद्ध पाप कर रहा हूं, वो तो बेचारा जनमानी पढ़ के सुना रहा है, क्यों? और बड़ा बक्ता हो, गुरुदेव साहब नहीं हो तो किसकी हिम्मत थी कि वो कुछ बोले है? पंडित हिम्मत भाई थे ना सोनगढ़ में, तो वो गुरुदेव उनकी तरफ देखते, कोई बात कहते ऐसी जो उन्हें लगती कि जो नहीं है वो शायद इनको जचे कि नहीं जचे, इनकी राय समझना चाहिए, उनको भी विकल्प आ जाता तो ऐसा देखते कैम ठीक है, ठीक है। तो वो आवाज की धुन में और स्टाइल में और तेजी से उससे समझ जाते थे कि इन्हें सहमत है कि असहमत, बोलते तो ठीक ही है, उसे लिखते तो उसका अर्थ ठीक ही होता, लेकिन वो बहुत धीमे बोलेंगे तो इसका मतलब इन्हें स्वीकार नहीं है, जोर से बोलेंगे उत्साह के साथ के ठीक है तो गुरुदेव समझ जाते थे कि इनको ये स्वीकार कर, समझिए ना, ठीक है ठीक है। जो लोग कहते थे अपने यहां तो ठीक है का मन बढ़िया ही होता है ना हिंदुस्तान में, गुजरात में ठीक है का अर्थ उतना बढ़िया नहीं होता है, बढ़िया होता ही नहीं है। मैं जाता था सोनगढ़ तो रामजी बापू मेरे से तबीयत पूछते थे, तबीयत कैसी बन रही है, क्योंकि अपन जन्मजात बीमार आदमी है, हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता था, तो पूछते थे तो मैं कहता हूं ठीक है, ठीक है क्या क्या होगा, अरे भाई ठीक है ना, पर ठीक है माने ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ होता है, हर दफे ऐसा होता, मैं भी भूल जाता, वो वही बोलता और वो भी वही बोलते कि ठीक नहीं है तो क्या है, फिर बताते हमारे यहां ठीक नहीं है का ऐसा अर्थ होता है, ठीक है ना, तो क्या बढ़िया एकदम अच्छा ऐसा बोलना चाहिए, आप समझिए ना, ठीक है। और ठीक है माने समझ गया ना, क्या ठीक नहीं है और ठीक ठीक है, दो दफा ठीक ठीक बोले तो क्या हो जाता है। आप लोग भी तो गए हैं ना गुरुदेव के पास, उनकी कुछ भाषा भी तो सीखी होगी, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है माने बहुत खराब है, क्या और फिर चलता है, समझ गए ना आपके बारे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारे मन में जो भाव होते हैं विरोध के, विरोध की बात बोलता हूं, तो एक तो श्रद्धा के लेवल पर होना, फिर एक चारित्र के लेवल पर होना, फिर उसमें भी मंद तीव्रता के लेवल पर होना, तो कौन का क्या स्थान है और उसका क्या अर्थ है हमें ये समझना पड़ेगा। वो कहते सर्वज्ञता का स्वरूप समझना, दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। दो चीजें आपने जानी तो पूरा जैन दर्शन जाना, गारंटी से आपको मोक्ष होगा। सम्यक दर्शन तो तत्काल होगा। कौन कौन सी दो चीजें? एक द्रव्य स्वभाव माने ज्ञान स्वभाव और एक ज्ञान पर्याय की पूर्ण निर्मल दशा। आप समझे ना, इन दो चीजें जानी बस। इनको बोलते हैं एक सर्वज्ञ स्वभाव और एक सर्वज्ञता। ये दोनों का ज्ञान करो। जैसा कहा ना अर्थी में गाथा में कि जो अरहंत को द्रव्यगुण पर जाए, अरहंत को जानते माने वो जो आठ प्रातिहार वाले चौथी सत्य वाले नहीं, कौन सर्वज्ञ, अकेला एक सर्वज्ञता। ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय को जानो और उधर ज्ञान स्वभाव को जानो। ज्ञानी ज्ञान को जानना है। ज्ञान माने आत्मा है ना। आत्मा कैसे जानता है? जो वर्णन चल रहा है ज्ञानाधिकार में 21वीं गाथा से चल रहा है ना अपना वर्णन, और अपना गए 34वीं 33वीं गाथा तक। तो यहां तक एक ही बात कहते आए हैं कि वो आत्मा कैसे जानता। हमारे चित्त में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। क्या शंकाएं होती हैं भाई? सबको जानना पड़ेगा। तो हमारी बुद्धि थोड़ी कमजोर रही शुरू से, तो गुरुजी जितना हमें पाठ देते थे वो बहुत भारी लगता था। और दूसरे विद्यार्थियों को, हाँ साहब तीन श्लोक याद करके लाना है, ध्यान ले आएंगे साहब। और तीन है ना, तीन तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसा लगता है सबको जानना, माथे पे तीन सल पड़ जाए तो समझ ला कि सबको जानना इसे स्वीकार नहीं है। क्या आनंद छलना चाहिए ना, कि ये दिक्कत होगी कि किस किस को जानेंगे हम? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम किसी को ही मत जानना, क्योंकि निश्चय से तो आत्मा पर को जानता ही नहीं ना। कुछ मत घबराओ, तुम तो निश्चय में रहो, तो फिर झंझट से बच जाएंगे ना। अरे बे, सारे पदार्थ तेरे ज्ञान में झलक जाएंगे। तुझे नहीं जानना है, इसका नाम है प्रतिभासित होता है। झल क्या क्या बोलते हैं, झलकाई जाए से क्या बोलते हैं, जनाए जाए छे इसको बोलते हैं। मैंने तेरे माथे पे जानने का बोझा नहीं है, तू इसकी चिंता मत कर। असम प्रतिबिंबित हो जाएगा वो, उसमें तुझे कुछ नहीं करना है। ख्याल में है ना, तुझे कुछ नहीं करना है। वो तो ये हम कहते तो काय को कह रहे थे हमको कि भाई ये होगा, ये बताएं कि नहीं बताएं। तेरा ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि लोकालोक उसमें प्रति समय आएगा। एक दफे पूरा साफ हो जाए तो, निर्मल हो जाए तो, पूरी तरह से परिणमित हो जाए तो सारा लोकालोक उसमें झलकेगा। तो मुझे तो नहीं जानना पड़े, बस मैंने जानने से छुट्टी हो गई। अरे भैया वो झलकेगा और तू जानेगा, तो मुझे जानना पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा मरेगा नहीं, तेरे को सहज जानने में आएगा। अब इस सहज जानने को हम कैसे समझाएं कि जिसको कुछ भी बात जरा भी बात में बोझा ही लगता है। क्यों? मैंने कहा परमात्मा उनसे इतना कह देना है, है, है? तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस कह देना है। कहना तो है ना कहना तो है ना, क्या कहना तो पड़ेगा। वो कुछ आलसी प्रकृति के ऐसे लोग होते हैं जगत में है? क्यों कि नहीं नहीं मेरे माथे पे नहीं, मेरे माथे पे नहीं, मेरे मेरे कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं। मैं भी ऐसा कहता हूं, मेरे पास लोग आते हैं और एक पर्चा देता है, एक दूसरा पर्चा देता है, एक देता है, एक कहता है कि प्रवचन के बीच में एक कह देना, दूसरा कहता है प्रवचन के पछी एक कह देना, हमारी संस्था के बारे में कह देना, उसके बारे में कह देना। बहुत आते हैं मेरे पास, आप ही लोगों में से। अब मेरे सब मिलने वाले सबके चौका में खाना खा के आया हूं, किस किस को मना करूं? जिनका नमक खाया है मना तो कर नहीं सकता। हां हूं करता हूं। और सच्ची बात यह है कि मैं जब प्रवचन करता हूं तो अपने माथे पर कोई बोझा लेकर के मैं प्रवचन नहीं कर सकता। मेरी पत्नी मेरे को नोट देती है कि जी 1000 रुपया जेब में रख लो, ध्यान रखना खो नहीं जाए, तो मैं वापस ले लेता। तुझे खोना हो तो मुझे दे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। तुम्हारे माथे पर क्या बोझा पड़ेगा? कैसे नहीं पड़ेगा? अब मैं तो एक मिनट कुर्ता पहन के बैठना नहीं चाहता हूं। घर जाऊंगा तो एक सेकंड में पहले कुर्ता उतारूंगा और जहां जगह होगी वहां डाल दूंगा। जिसके घर जाऊंगा उसके घर में उतारूंगा, तुम्हारे घर में आऊंगा तो वहां भी उतारूंगा। मैं तो नहीं बैठूंगा कुर्ता पहन के, क्यों? अब फिर उसमें 1000 रुपए दे, अब मैं उस कुर्ता की रक्षा करूं क्या कर? जब तक उसको रहने होंगे भी उसमें रहेंगे, और नहीं रहने होंगे नहीं रहेंगे, कोई लेगा ले लेगा नहीं, उल्टा होता है तो गिर जाते हैं। मैं ये बोझा लेके नहीं चलता। अभी मेरे जेब में एक पैसा कभी नहीं पाओगे, आपको सब चोर बेचारे है परेशान होते होंगे, सब कभी नहीं। रेल में पत्नी स्टेशन पे छूट जाए ना तो मुझको वो वहां पहुंचना भारी हो जाएगा, कहीं रिक्शे के पैसे भी मेरे पास नहीं होंगे। बोझा नहीं चाहिए किसी को, ज्ञान का भी बोझा नहीं चाहिए। मैं नहीं, अब मैं अंत में किन किन के पर्चे रखे हैं और मुझे बोलना है, मैं तो एकदम अपने मन में मस्त रहता हूं और जो बात मुझे कहना है मैं वो कहता रहता हूं। और जब मैंने खत्म की तो सांस लेता हूं शांति से, ख्याल में आए ना? और इतने में तो जनता में लगी स्प्रिंग तो वो खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाती है और जाने लगती है, उसकी सूचना रह जाती है। साहब में हमने कहा था कि हमारे मेरठ की सूचना दे देना, हमारे वहां की दे देना। अरे तुम आओ ना, तुम दे दो ना कि पर्चा दे दे। पर्चा नहीं, पर्चा भी देना तो उसी वक्त देना, उसमें जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन मैं नहीं रख सकता बोझा। तो इसको हरेक को बोझा नहीं चाहिए। तो जरा सा भी ऐसा लगता है कि लोकालोक मेरे ज्ञान का गेय बनेगा तो मुझे माथे पे बोझा होगा, तो वो कहता न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये पर को जानने का झंझट ही खत्म करो ना, तो बोझा ही नहीं रहेगा। तो वो बोझा उतारते हैं, ज्ञान नहीं उतारते, बोझा उतारते हैं कि तेरे ज्ञान में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरे साथ ऐसा होता है फिर कि आप जा रहे हैं, आप प्लेन से जा रहे हो तो जब बाहर निकलोगे तो वहां हमारा आदमी खड़ा मिलेगा, उसे आप ये चिट्ठी दे देना, या दे दूंगा। खड़ा मिलेगा और मुझसे मांगेगा तो मुझे याद नहीं रहेगा कि यहां मुझे देना है, मैं नहीं मांगेगा तो दे दूंगा। और यदि नहीं आया और मैंने नहीं दी तो वो चिट्ठी उसको तो कभी मिलेगी नहीं, तुमको भी नहीं मिलेगी। सच्ची बात है क्या? मुझे याद ही नहीं रहेगा, तो कहां गिर जाएगी, कैसे होगी, कैसी होगी, मुझे कुछ पता नहीं। मैं किसी काम का आदमी नहीं हूं, वास्तव में एक ही काम का हूं, प्रोचन करवा लो सोते में। कई दफे किया मैंने सोते में प्रोचन, और जैसा जागते में कहता हूं हूबहू वैसा। विमल जी बीमारी में 9 दिन तक बेहोश रहा था, मैंने कई दफे प्रवचन किया बेहोशी में पूरे के पूरे, और डॉक्टरों ने सुने हैं। वो डॉक्टर मेरे से जब होश में आए तो बोले वो रिक्शे वाले का क्या हुआ। एक केवल ज्ञान स्वभाव है उसका बताकर हमारे माथे का बोझा उतार रहे हैं। तो उनने पिछले में क्या कही थी कि ना ग्रहण करता है न त्याग करता है न परिणमाता है, बस निरवशेष, निरवशेष माने कुछ बाकी नहीं बचे, अवशेष माने बाकी, बाकी बचना, और निरवशेष माने कुछ बाकी नहीं बचे, ऐसे सारे लोकालोक को वो जानते हैं। पर ये बात पिछली गाथा में कही थी, अब इस गाथा में क्या कह रहे हैं वो, जो ही सुदेण बिजान दी अपाणम जानगम सहाबेण तमस केवली मिशनो भणंती लो यपदी बैरा। बोलो हिंदी में बोलो, जा गाओ। केवली भगवान अपने आत्मा को निश्चय से जानते हैं और सारा लोकालोक इनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, इसलिए उसे पर उसे व्यवहार कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं व्यवहार के भी जानते नहीं हैं, जानते तो हैं लेकिन निज रूप में नहीं जानते, उसको बोलते शास्त्रीय भाषा में तन्मय होके नहीं जानते। तन्मय माने उपयोग की एकाग्रता नहीं, ये मैं हूं ऐसा करके नहीं जानते। देखो फर्क है, हम सारी माताओं बहनों को जानते हैं, है ना, एक बात हो गई, और एक महिला को उसे भी जानते हैं और अपनी पत्नी के रूप में जानते हैं, फर्क हो गया ना। सारी महिलाओं को जानना और एक महिला को अपनी पत्नी के रूप में जानना, दोनों में फर्क है कि नहीं। तो अपन कहते हैं कि ये आपकी है व्यवहार से, वो आपकी क्यों नहीं है, क्योंकि हम उन्हें तन्मय होके नहीं जानते। तन्मय होना माने ये हमारी पत्नी है इस रूप में जानना, समझे ना, ऐसी मान्यता, उसको नहीं जानना बोलते हैं, आप समझे ना, उसको नहीं जानना बोलते हैं। एक सच्ची घटना सुनाता हूं, दो मिनट की है। मैं इंदौर में रहता था आज से 48 साल पहले, तो हम एक स्कूल में पढ़ाते थे, उस स्कूल के एक मास्टर जी और हम ऐसे बाजार में साथ में गए, तो एक मोक्षु मंडल के अध्यक्ष थे, उनकी कपड़े की दुकान थी, जेलाल चंद उनका नाम था, आप जानते होंगे इंदौर के सब जेलाल चंद को। तो उनकी दुकान पर पहुंचे तो मैंने कुछ कपड़ा लिया और मैंने उनसे कहा लिख लेना, उन्होंने ठीक है पंडित जी। तो उन मास्टर जी ने वो कपड़ा खरीद लिया मुझे और वे बोले लिख लेना है, हम आपको जानते नहीं, उनके लिए उन्होंने नहीं मना कर दिया, मेरा तो लिख लिया और उनके लिए मना कर दिया। तो वो बोला बहुत गंभीरता से मास्टर, मुझे पंडित जी जानते हैं क्या, पंडित जी आप जानते हैं क्या कहूंगे, आपसे पूछता क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं। मैंने कहा हां साहब जानते हैं, हमारे स्कूल में अध्यापक हैं, हम एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्होंने उनके भी नाम लिख लिए। फिर 6 महीने बाद मिले तो बोले आपके आपके मास्टर जी के पैसे नहीं आए, कौन से हमारे मास्टर जी, हमारे तो कोई मास्टर जी नहीं है, हम मास्टर जी हैं, नहीं वो आपके साथ आए थे जिसे आप जानते थे। मैंने कहा जो उन्हें हम जानते थे और जो जानते थे वो भी बता दिया था आपको कि जी हमारे स्कूल में उसी में पढ़ाते हैं, ये जानते हैं हम, उन्हें पैसा नहीं आए। तो मैंने कहा हम ये भी जानते हैं कि अभी तक नहीं आए होंगे और कभी नहीं आएंगे, क्या बात कह रहे हैं, हम तो आपके भरोसे दिया, क्यों दिया तुमने हमारे भरोसे, कमाई तुम करो, बुरे हम बने, हम क्या कहते तुमसे, कहते बेईमान आदमी है ऐसे उधार मत देना, क्या कहते हैं बोलो तो, उसी के मुंह पे आप पूछ रहे हो हमसे, और सिर्फ इतना इन्हें जानते हो कि नहीं जानते हो, तो हम तो यही तो कहेंगे ना जानते हैं, क्योंकि नहीं जानते भी वो जानते तो हमने कहा नहीं, हमने झूठ भी नहीं बोला। अरे एक जानना और ईमानदार के रूप में जानना, इन दोनों में फर्क है ना। बोलो ऐसे तो हम सारी दुनिया को जानते हैं, राजेंद्र जी को जानते हैं, हाँ हम जानते हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, यदि प्रवचन करने बैठे तो सभा मुग्ध हो जाती है, हम जानते हैं ना। हर एक के बारे में जो विशिष्ट हम जानते हैं वही तो जानते हैं ना, क्यों और बात की बात कहाँ है यहां। तो वो ये कहते हैं कि केवल ज्ञान का जो स्वभाव है आप समझे ना, वो सारे लोकालोक को जानने का है, जो जैसा है वैसा जानते हैं, पर जिनको वे निज रूप जानते हैं वो सब निश्चय कहलाता है, और जिनको वे निज रूप नहीं जानते हैं यानी उसका अर्थ हो गया पर रूप जानते हैं। जरूरत नहीं ऐसी कहने की कि पर रूप जानते हैं, बस निज रूप नहीं जानते हैं, नहीं जानते माने जाने चाहे नहीं जाने, वो कुछ भी हो बस वे सब पर हैं, वो व्यवहार है, इतनी सी बात है। अब ये निश्चय व्यवहार जो केवली पे लगाया वो इस गाथा में सुर्त केवली पे लगा रहे, मैंने सीधी सच्ची बात यह है कि अभी तो केवली भगवान पे लगा रहा है, अब हम तुम पे लगा रहे, मध्य ज्ञान सुर्त ज्ञान वाले पे लगा रहे। तो वो कहते हैं कि केवली भगवान जिस प्रकार अपने आत्मा को जानते हैं काय से जानक स्वभाव से, क्योंकि उसे जानने का स्वभाव है इसलिए वो जानते हैं, ऐसे सुर्त केवली भी अपने आत्मा को जानते हैं। अब पर को जानते हैं तो सुध केवल जी का भी वो व्यवहार है। देखो मैं टीका पढ़ता हूं, जो वास्तव में श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानते हैं उसे लोक के प्रकाशक ऋषिगण श्रुत केवली कहते हैं। अब ये बड़ी समस्या है कि अपने आत्मा को जानते हैं वे निश्चय श्रुत केवली, और द्वादशांग वाणी को जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली। जो निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं वे केवली, और जो केवल ज्ञान के द्वारा सारे लोकालोक को जानते हैं वे व्यवहार केवली, वे निश्चय केवली वे व्यवहार केवली। तो जैसे निश्चय व्यवहार केवली पर घटित होता है वैसे ही निश्चय व्यवहार श्रुत केवली पर भी घटित कर लेना चाहिए। ये गाथा है, इस गाथा में कहने को बहुत है। क्या है अब गंभीरता से सुनना, अपना गाथा वाथा नहीं देखेंगे, सुनना आप शांति से। वो कहते हैं कि पर को जानना व्यवहार से क्यों, वो तो केवली पर, लेकिन श्रुत केवली पर द्वादशांग का पाठी हो तो व्यवहार से श्रुत केवली, और अकेले आत्मा को जाने तो निश्चय से श्रुत केवली। तो अपन को बहुत सस्ता लगता है, अकेला अपने आत्मा को जानो और असली श्रुत निश्चय माने असली असली श्रुत केवली बन जाओ, और सारे द्वादशांग लड़ते रहो क्यों, और व्यवहार से श्रुत केवली कह रहे हैं। ये एक झंझट है, और इसलिए बहुत से लोग हर समय दृष्टि को श्रुत केवली मानते हैं, जबकि ये बात सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी इस जगत में सम्यक दृष्टि तो विद्यमान है, पंचम काल में भरत क्षेत्र में भी, लेकिन श्रुत केवली तो नहीं है, भद्रबाहु के बाद तो श्रुत केवली नहीं हुए। यदि आत्मा के अनुभव का नाम निश्चय केवली होता, ख्याल में है ना, केवली हो जाते होते निश्चय केवली तो है ही, अभी क्यों है वो बताऊंगा, तो फिर अभी कृत केवली होने चाहिए थे, समझ गया। चौथे गुण स्थान में श्रुत केवली होते हैं क्या, नहीं है? नहीं होते, इस क्षेत्र में नहीं होते, मनुष्य भव में नहीं होते, लेकिन देव तो होते हैं ना, इंद्र होते हैं, फिर द्वादशांग के पाठी होते हैं, हैं? इसलिए चौथे गुण स्थान से ऊपर है नहीं वो, भक्तांबर में लिखा है, हैं? कहां है, कौन से दूसरे तीसरे छंद में है ना, हैं? तो वो जानते हैं। खैर अभी जाने दो, अभी तो अपने मुद्दे की बात यह है कि द्वादशांग के पाठी हुए बिना श्रुति केवली नहीं होते। और वो कहते हैं कि जब निश्चय से आत्मा के जानने का नाम श्रुति केवली है, परिभाषा तो पूर्ण है कि हां है, तो ठीक है, हमें सम्मान दर्शन हो गया तो हम श्रुति केवली हो गए निश्चय से, व्यवहार से ना सही। ऐसा एक पक्ष है और उस पक्ष की बारे माध्यम से बताई है। मैं तो थोड़ी टीका पढ़ूंगा, घबराना नहीं, पांच एक मिनट का धैर्य रखना, फिर बाद में आपकी सब समझ में आएगा। देखो, अनादि निदन निष्कारण असाधारण स्वसंवेद्यमान चैतन्य सामान्य महिमा के धारक चेतन स्वभाव से एकत्र होने से, यहां तक एक वाक्य कोमा लगाओ यहां है। अब जिस प्रकार भगवान माने केवली भगवान युगपत परिणमित समस्त चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा, ये केवल ज्ञान के विशेषण है, कि जिस प्रकार भगवान केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव के कारण केवली है, ये क्यों केवली है, ये चार लेन में बताया। फिर एक दफे पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, फिर मैं अर्थ बताऊंगा शांति से, देखा फिर देखने को नहीं कहूंगा, अभी देख लो एक दफे। अनादि निधन निष्कारण असाधारण संसंवेद्यमान चैतन्य सामान्य महिमा के धारक चेतन स्वभाव से एकत्व होने से, ये चेतन स्वभाव के विशेषण है सब। कौन कौन? अनादि निधन निष्कारण असाधारण सुसंवेद्यमान चैतन्य सामान्य महिमा के धारक, ये सब ये चैतन्य स्वभाव के विशेषण, चेतन स्वभाव के विशेषण है। कहते जैसे एक साथ प्रणमित संपूर्ण विशेष, सारी विशेष पर्याय उन्हें एक साथ प्रणमित है, माने एक साथ सारा लोकालोक को जानने की सामर्थ्य है, ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली, वो आत्मा उन्हें जाना इसलिए वो केवली है निश्चय से। अब देखो उसी प्रकार अनादि निधन निष्कारण असाधारण सुसंवेद्यमान चैतन्य सामान्य महिमा के धारक चेतन स्वभाव से एकत्व होने से हम भी, अब अपनी हमारी तुम्हारी बात, अब ये इतने विशेषण लगाए, अब मिला ऊपर से कौन अलग अलग है कौन मिलता है। अनादि निधन ऊपर था ना, अब यहां भी अनादि निधन है ना, ऊपर निष्कारण, यहां भी नीचे भी निष्कारण है, ऊपर असाधारण नीचे भी असाधारण है, सुसंवेद्यमान नीचे भी सुसंवेद्यमान है, चैतन्य नीचे भी चैतन्य है, सामान्य ऊपर भी सामान्य है, ऊपर भी महिमा के धारक नीचे भी महिमा के धारक है, तो चेतन स्वभाव से एकत्व होने से, यहां तक बिल्कुल वही का वही वाक्य है द्वारा रिपीट किया है। अब हम पढ़ते जाते हैं, दो दफे पढ़ लेते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है ये रिपीटिशन हो रहा है क्या, रिपीटिशन है तो एक काट दो। मैंने जो विशेषण केवली भगवान को लगाए वही विशेषण आत्मा के अनुभवी सम्यक दृष्टि को लगाए, वे केवली भगवान अपने केवल आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में ये जानते हैं ना, इसलिए वो केवली कहलाते हैं निश्चय से। तो ये भी पर वो केवल ज्ञान के माध्यम से और ये श्रुत ज्ञान के माध्यम से, वो अपने आत्मा को अपने से अपने स्वयं जानते हैं, इसलिए ये श्रुत केवली है। निःश्रुत ज्ञान से जाना तो श्रुत केवली और केवल ज्ञान से जाना तो केवली। देखो पढ़ो आगे भी, हम भी अब किर्मशा परिणमित, ऊपर लिखा था युगपद परिणमित, देखो मिला अब केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान का जो अंतर है, तो किर्मशा परिणमित फिर कतिपय, ऊपर सर्व ऊपर था सब और नीचे लिखा कतिपय माने कुछ, समझ गए ये अंतर, समझना घर पे भी पढ़ो तो शांति से ऐसा पढ़ना मिलान करके। चैतन्य विशेषों से युक्त सिद्ध ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण श्रुत केवली हैं, माने केवली के समान ही हैं हम। इसलिए विशेष आकांक्षा से के क्षोभ से बस हो, हम तो स्वरूप निश्चल ही रहते हैं। अब कहते जानने की इच्छा ज्यादा मत करो, विशेष आकांक्षा से बस हो। अब जब जैसे वे हैं ऐसे हम, जो उन्हें मिलना था वो हमें मिल गया, उन्हें शुद्ध ज्ञान में था केवल ज्ञान था तो केवल ज्ञान से मिल गया, हमें शुद्ध ज्ञान का था शुद्ध ज्ञान से मिल गया। अब तुम्हारा काम तो रुका नहीं, तुम भी निश्चय शुद्ध केवली हो गए, समझ गए ना। अब तुमको क्या है जो और जानने की इच्छा है, तो ये जो सारा कथन है अधिक जानने की इच्छा के की आकुलता को रोकने के लिए है, क्या समझे ना। निष्कर्ष दिया ना कि विशेष जानने की उसका क्षोभ क्यों करते हो, हमें ये नहीं आता है ये आता है ये नहीं आता है, लेकिन तुम्हारा जो तुम्हें शुद्ध केवली बनना है उसके लिए वो जानना जरूरी है ही नहीं निश्चय से। अभी देखो ये बीच वाला सत्य है, अभी यहां पर स्थिर हो जाओ तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। माने केवली व श्रुत केवली में कोई अंतर नहीं है, ये यहां उन्होंने कितने विशेषण लगा लगा करके बात बताई। वे विशेष क्षोभ की आकांक्षा से बस हो, अब हमें क्या करना, तो अब ऊपर जानने में आ जाता है तो हम क्या करें साहब, कुछ नहीं आ जान दो कि नहीं आया साहब मत आने दो, तो करें क्या लाए क्या नहीं लाए। अरे तुम कुछ नहीं करो ना, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या श्री कृष्ण बलदेव के पास आए कब, जब वे लौट के आ गए थे कौरव पांडवों को समझा समझा के, उनने इनकी एक नहीं सुनी थी, अभी लड़ने को तैयार थे, तो इन्होंने भाई साहब को बुलाया बलदेव को कि भाई साहब अब वे तो मानते नहीं लड़ाई होगी, और मैं तो नाराज होके आ गया, लेकिन वे छोड़ेंगे नहीं, देख लेना दो दिन बाद आज हम कहेंगे दोनों इंजने और फिर अपन से युद्ध में सहायता मांगेंगे, तो अपन पहले अभी बैठ के तय कर लो कि किसको सहायता देनी है, देनी कि नहीं देनी है, देनी तो क्या देनी, जिसे जवाब दे सके ना। तो बलदेव ने कहा भैया हमें लड़ाई में किसी को कोई सहायता नहीं देनी, तो क्या करना कि समझाना कि मत लड़ो, लड़ाई से आज तक किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, युद्ध से आज तक कोई निहाल नहीं हुआ, समझाना। और क्या करना कि हम तो बहुत समझाया, क्या अच्छा बहुत समझाया, नहीं मानेंगे नहीं माने, अब अपने ही है ना, अपने रिश्तेदार हैं दोनों, तो अब दोनों मांगेंगे तो सहायता तो देनी ही पड़ेगी ना, क्यों तो नहीं माना तो लड़ेंगे तो लड़ाई में। अरे भाई अभी अपने हैं ना इसीलिए समझाना, क्या अपनी क्यों नहीं मानेंगे, उन्हें अपनी मानना चाहिए। आखिर इनका बहुत वाद विवाद दोनों भाइयों का हुआ, उनने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि दो बच्चे लड़ते रहें और माँ बाप ऊपर आराम से बैठे बैठे देखते रहें, नहीं हो सकता, अपन आखिर तीन खंड के राजा चक्रवर्ती हैं, अपने ही शिष्य अपने उसके अंदर ही थे ना, ये लड़ते रहें और अपन ऐसे देखते रहें ये संभव नहीं है, अपन को उसमें भाग लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि नहीं लेंगे तो वे अलग हो गए। पूरे महाभारत में गायब है बलदेव, जब सारी जिंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ा उन्होंने श्री कृष्ण का, कि भाई कि हमें हम इनको अकेले देंगे, इनको ये देंगे, इनमें क्या दम, हम कुछ भी नहीं, हम तो अनुमोदना भी नहीं देंगे, क्या हम तो सम्मति भी नहीं देंगे, क्यों कि जाओ तुम्हें जो दिखे सो करो, हम तो ऐसा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो दिखे सो करो ये इनडायरेक्ट में सम्मति सम्मति ही है ना। कभी मानेंगे तो नहीं मानेंगे, जो करना हो उन्हें करने दो, हम का उसके जिम्मेवार हैं। बलदेव तो ऐसा कह के अलग हो गए। अब वो यहां इसको विकल्प में उलझा है, क्या करें क्या करें क्या करें, हम तो नहीं जान, हम तो सुख केवरी अकेले आत्मा के जानने से हो गए। लेकिन सारा गेज जानने में आता है इसका क्या करें, कि तुम्हें कुछ नहीं करना है ये तो हम कह रहे हैं, आने दो। बहुत कुछ नहीं आता है उसका क्या करें, कि मत आने दो। और आ जाए तो कि जान लेना, नहीं आए तो नहीं जानना। वो कहते एक ऐसा आदमी है कि यही आदमी सच्चा है। देखो वो कहते केवल ही के, अब वो जो केवल ज्ञानी है, हमने निश्चय वाले जो बन गए, जरा समझना यहां से खराबी शुरू हो रही। वो कहते हम तो निश्चय से सम्य दृष्टि हो गए, तो अपने गुरुदेव सम्य दृष्टि थे तो वे भी निश्चय से सुत केवल ही हो। क्यों अब इसका क्या करें कि भद्रबाहू अंतिम सुत केवली थे और उसके बाद कोई सुत केवली हुआ नहीं। बोलो आप आगम के आधार पर दिगंबर जैन समाज में, जैन समाज में किसी भी सम्यक दृष्टि को सुत केवली मनवा सकते हो? निश्चय के लिखा इसमें आगम है, देखो आधार में। अरे भाई तुम आगम पढ़ना नहीं जानते हो तो हम क्या करें। वो तो कह रहे हैं कि सुत केवली तो वो ही होता है, ध्यान से सुनना, कौन जो अंदरंग में आत्मा का अनुभवी हो और बहिरंग में द्वादशांग का पाठी हो, दोनों क्वालिफिकेशन पूरी हो तो वो सुत केवली होता है, समझ गया। और अब उसमें जो आत्मा को जाना उसके कारण वो निश्चय सुत केवली होता है, और द्वादशांग को जाना उसके कारण वो व्यवहार सुत केवली होता है। सिर्फ इतनी सी बात है, लेकिन होना दोनों ही चाहिए, माने निश्चय और व्यवहार सुत केवली अलग अलग होते ही नहीं, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, निश्चय केवली और व्यवहार केवली। बस वो द्वादशांग को जानने के कारण व्यवहार सुत केवली कहलाते हैं और आत्मा को जानने के कारण निश्चय सुत केवली कहलाते हैं। भद्रबाहू के बाद में कोई द्वादशांग का पाठी नहीं हुआ इसलिए व्यवहार सुत केवली नहीं है, और तो असम्मा दर्शन है तो अकेले निश्चय सुत केवली से किसी के सुत केवली संज्ञा नहीं है। अब काम तो पूरा हो गया ऐसा नहीं चलता है। उस सुत केवली जो संज्ञा है, जो मैंने धर्म के विलक्षण किताब में ब्रह्मचरी वाले लेख में लिखा, ब्रह्म भाव अंतर लखो लिखा ना, शील बाढ़ नव राख और ब्रह्म भाव अंतर लखो, अंदर में भगवान आत्मा का अनुभव, वो ब्रह्मचरी है, ब्रह्मम चरणीति ब्रह्म है ना, और बाहर में नौ बार से शील की रक्षा करना। तो कोई कहे वो तो व्यवहार ब्रह्मचरी है और ये निश्चय है ना, तो हमने आत्मा का अनुभव हो गया, भरत चक्रवर्ती को हो गया था ना, मांगे पेट से ही था, छायक समय दृष्टि थे ना, लेके ही आए थे, तो उन्हें बाल ब्रह्मचारी घोषित कर, निश्चय से ब्रह्मचारी तो है ही ना भी, क्या ठीक है, 96,000 शादियां करेंगे, उन्हें पत्नियां होंगी और ब्रह्मचारी, क्या बोलो आपको स्वीकार है कि नहीं? कैसा वो पहले बाहर का नियम होना चाहिए, बिल्कुल पक्का, शादी का सवाल ही नहीं है, है? तो शादी नहीं करेंगे, पक्का नियम है, अब ब्रह्मचारी पक्के, अब कहने के तो पक्के हैं ही, वो निश्चय वाले तो कहने के भी नहीं है, है ना, लेकिन वास्तव में आत्मा के अनुभव से ब्रह्मचारी होंगे। तो ब्रह्मचारी भी कौन, जो निश्चय और व्यवहार दोनों व्रत पाले, ऐसा नहीं है व्यवहार की क्या जरूरत नहीं है, शील बाढ़ नव राख और ब्रह्म भाव अंतर लखो, इसमें और आपको विशेष विस्तार से देखना हो तो समय सार गाथा 9-10 का अनुशीलन पढ़ना, वहां मैंने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है। इसमें भी निश्चय सुत केवली, व्यवहार सुत केवली है, प्रवचन सार में भी है, पंचाश्तिकाय में भी है, हर जगह वर्णन है। अब एक जगह लिख दिया तो तीन तीन जगह फिर कहां लिखें, फिर भी कहीं जरूरत समझी तो थोड़ा बहुत वहां भी उल्लेख कर दिया, तो यहां भी उल्लेख किया है। आगे इसे पढ़ोगे तो ये सब लिखा है, देखो पीछे के पेज पे निकालो, पेज नंबर 166 सबसे नीचे की तीन पंक्तियां। समय सार की नौवीं दसवीं गाथा के प्रकरण में भी इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित हुआ है, अतः समय सार के अनुशीलन के समय इस प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। महत्वपूर्ण अंश इधर भी है और विस्तार से बात उधर है, लेकिन मूल मुद्दे की बात क्या है इतना सब समझ सकते हैं कि निश्चय और व्यवहार केवली हो चाहे श्रुत केवली दोनों ही होते हैं तब वो कहलाते हैं। यानी वो द्वादशांग का पाठी भी होना जरूरी है और आत्मानुभवी भी होना भी जरूरी है। तब फिर भी ऐसे व्यक्ति को जब वो कहेंगे कि निश्चय श्रुत केवली क्यों है, क्योंकि वो अपने आत्मा को जानता है, और व्यवहार श्रुत केवली क्यों है, क्योंकि वो द्वादशांग का पाठी, ऐसा बोलेंगे। वे कहेंगे अनंत भगवान स्वयं को भी जानते हैं और लोकालोक को भी जानते हैं, ख्याल में आए ना दोनों बात, स्वयं को भी जानते हैं और लोकालोक को भी जानते हैं, लेकिन स्वयं को जानने के कारण निश्चय केवली और लोकालोक को जानने के कारण व्यवहार केवली। हमने ठीक है, हम तो निश्चय केवली मानेंगे, व्यवहार केवली नहीं मानेंगे। अरे भाई माना तना का नियम तो दोनों हो तब है। क्यों? आपको दसवीं क्लास तक का ज्ञान भी होना चाहिए और दसवीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास भी होना चाहिए। हम बुलाते हैं सबको बुला बुला करके, विद्यार्थियों को लाओ हमारे महाविद्यालय में भर्ती होना है, वो दसवीं क्लास पास होना चाहिए, फिर 18 दिन का इंटरव्यू होगा मेरठ शिविर में, आ जाओ वहां रहना पड़ेगा। तो जब हम फर्स्ट डिवीजन पास हैं तो फिर काय का इंटरव्यू, कि नहीं इंटरव्यू तो होगा, तो इंटरव्यू ले लो, फिर डिवीजन काय को देखते हो, कि नहीं डिवीजन भी देखेंगे और इंटरव्यू भी लेंगे। नहीं ना, कभी कभी ये डिवीजन वाले बिल्कुल जीरो निकल जाते हैं। अच्छा तो ठीक है, हम इंटरव्यू भी ले लो, लेकिन नहीं देखेंगे भी तुम्हें, तुम्हें दिखता है कि नहीं, नहीं हमारे पंडित जी बन जाओगे तुम आंखें नहीं दिखेगा, नहीं तो तुम्हें शकल सूरत अच्छी है कि नहीं, गद्दी पे बैठने लायक हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि तुम गद्दी पे बैठो लोग हंसे देख देख के। हमको विद्वान बनाना है ना, जैसे अपन दूल्हे को देखने जाते हैं तो क्वालिफिकेशन भी देखते हैं, इनकम भी देखते हैं, घर भी देखते हैं और शक्ल सूरत भी देखते हैं, ऐसा थोड़ी कोई समझौता थोड़ी करते हैं। हम सब चीज देखेगी तो सब चीज होगी तब होगी, लेकिन फिर जब कोई बात आई, क्यों भैया तुमने अभी लड़की उसके साथ क्यों कर दी, अरे साहब वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, लेकिन मंदिर तो आता ही नहीं कभी, धर्म की तो रुचि ही नहीं है, अरे साहब फर्स्ट क्लास फर्स्ट। वो बात है आपने किसको महत्व दिया और किसको नहीं दिया, उसका हिसाब अलग है, लेकिन जैसे कहते हैं निश्चय केवली और व्यवहार केवली, ये दोनों केवली एक ही व्यक्ति होते हैं, दो नहीं। हमने उन दो व्यक्तियों को दो बनाकर उनसे लड़ाई करा दी, हम निश्चय वाले केवली वाले हो गए, तुम व्यवहार केवली वाले हो गए, हम स्व को जानने वाले हो गए कहने वाले, और तुम उसको पर को जानने वाले हो गए कहने करके, तो मुफ्त में सूतना कपास जुलाओं से लटा लगी। तुम जब केवली बनोगे तो कैसे बनोगे बोलो, अकेला आत्मा को जाना चलेगा, पर को नहीं जाने ऐसे बनोगे, कैसे कैसे बनेंगे, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो श्रुत केवली में भी ऐसा और केवली में भी ऐसा है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझे बिना कुछ कहीं पार नहीं पड़ेगी। अभी मैं लिख रहा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इस गीत का अनुशीलन लिख रहा हूं, 30-40 पेज लिखे हैं अभी, वहां भी मुझे सब नए लिखने पड़ रहे हैं, समझा ही नहीं सकता हूं, नहीं तो क्या करूं। बोलो राजेंद्र जी, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूं, इसमें मैं शुद्ध हूं का क्या अर्थ है, ये कौन से नय का शुद्ध हूं, एक भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उसका हूं, कर्मोपाधि सापेक्ष निरपेक्ष है ना शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उसका हूं, ये भी शुद्ध द्रव्यार्थिक है। उत्पाद वे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय इसका हूं कि नहीं हूं, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उसका जो विषय है वो शुद्ध है, इस शुद्ध का अर्थ है परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जो अर्थ है वो है। अब उन्हें समझाने के लिए चार प्रकार के निश्चय और दस प्रकार के व्यवहार नहीं द्रव्यार्थिक नए मुझे समझाने पड़ रहे हैं। अब लोग भी इतनी तलम बचौड़ा काय में कर दिया, लेकिन वो शुद्ध है ना शुद्ध शुद्ध तो हमारा तो शुद्ध हाँ मैं शुद्ध वस्त्र पहन के आई हूं, तुम्हारे तो वस्त्र शुद्ध होते हैं, तुम शुद्ध थोड़ी होते हो, शुद्ध का चौका होता है ना है? क्यों धुले वस्त्र पहन लेते ना, अरे कौन सा शुद्ध है रे, ये 25 शुद्ध निकालो विमल जी और मैं बताऊं कि ये शुद्ध नहीं है, और इस यहां के शुद्ध का अर्थ ये शुद्ध है। अब वो कितने लोग समझते हैं चार प्रकार के निश्चय नये और 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नये, और उनमें से चौथा निश्चय नये और 10वां द्रव्यार्थिक नये, उनका विषय भूत जो आत्मा है उसका नाम शुद्ध है, मैं शुद्ध बुद्धि अवरुद्ध बोलो क्या करूं, इसके बिना समझा सकते हैं। अच्छा क्या जरूरत थी इसका अर्थ नहीं जानते हैं, तुम सब जानते हो। अब मैं पूछता हूं कि जो मैंने शुद्ध का अर्थ अभी यहां बताया है थोड़ा आपको, वो आप जानते थे कि शुद्ध का अर्थ ऐसा है क्यों, नहीं जानते थे ना, और वो गीत पढ़ लिया सैकड़ों बार तब भी नहीं जानते हैं, और वो अनुशीलन पढ़ लेंगे तब भी नहीं जानेंगे क्या कर रहे, पढ़ लेंगे निकल जाएगा, जब तक मैं डंडा मार मार के दो चार जगह कहूंगा नहीं ध्यान नहीं दिलाऊंगा कि देखो देखो ये है, तब तक नहीं उतरेगा उतरेगा गली। इसमें निरंतर अभ्यास करने की कितनी जरूरत है, सुनने की पढ़ने की विचार करने की चिंतन करने की। वो यहां है क्या नाम चेतन भाई है क्या नाम है, यहां आए अभी वो खरिया जाने से हैं, सचिन वो आठ आठ दस घंटे स्वाध्याय करते हैं, सुनना चाहिए, ये मनुष्य समुदाय के लिए मिला है, ये बस दुनियादारी के इन चक्करों के लिए, इतनी गहराई में जाएंगे तो तत्व ज्ञान हाथ लगता है। अब ये गाथा क्या है देखो, अपने पढ़ी थी ना कहां गई, फिर निकल गया नहीं जाता भैया, कितना पेज है पेज नंबर बताओ भैया, 165 पढ़ो पढ़ो अच्छी तरह से उसे देखो, शुद्ध ज्ञान से जो जानते अब आपको ये निश्चय नय से ऐसा ऊपर से लगाना पड़ेगा, कौन शुद्ध ज्ञान से जो जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा ऋषिगण लोक के प्रकाशक ऋषिगण माने तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञानी उनको शुद्ध केवली कहते हैं। अब कौन नये से इसमें नहीं लिखा, तब जिस नये से कहते होंगे वो नये आपको निकालना पड़ेगा, तो आपने कहीं निकाल लिया कौन से कि वो जो व्यवहार निश्चय नये से कहते हैं, तो भी निश्चय नहीं तो चार प्रकार के होते हैं, कौन से निश्चय क्यों, तो ये चार प्रकार के निश्चय नहीं की परिभाषा जाननी पड़ेगी है, और फिर वो उनमें से निकालना पड़ेगा कौन से नये का, कि द्रव्यार्थिक नये से तो कौन से द्रव्यार्थिक नये एक दो थोड़ी होते हैं, करना पड़ता है लोक में कि एक किताब जाकर हुकुमचंद को दे देना, कौन से हुकुमचंद, यहां 5 हुकुमचंद है, आप लोक में भी करना पड़ता ना भाई फर्क है संतो, तो जनवाणी में भी करना पड़ेगा उपयोग। उपयोग लगा के हम निर्णय करेंगे तो ही कोई चीज हमारे हाथ लगेगी। अभी अपन ने दो कथाएं हो गई अपनी, कौन कौन सी, 32वीं और 33वीं। 32वीं में क्या कहा है ना, ठीक है, वह भगवान ना ग्रहण करते हैं ना छोड़ते हैं ना प्रणवन कराते हैं, सिर्फ जानते हैं। और अब कहा कि सिर्फ जानते केवल ज्ञानी की बात थी, अब कहते श्रुत ज्ञानी भी श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानते हैं तो उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। क्या अकेले आत्मा को जानते हैं तो श्रुत केवली कहते हैं, ये निश्चय हो गया। और सारे लोकालोक को जानते हैं तो उसे व्यवहार कहते हैं, ये व्यवहार केवली हो गए। तो निश्चय केवली की बात तो सच्ची, वो व्यवहार केवली की सच्ची नहीं। तो लोकालोक का जो वर्णन किया है उसको कौन से केवली ने कहा, द्वादश अंग वाणी में वर्णन है ना, ये जम्बू द्वीप है, ये ढाईगढ़ द्वीप है, ये द्वीप के बीच में सुमेर पर्वत है,